थोड़ा सा सूरत इब्राहिम के मज़ामीन पे गौर व फ़िक्र कीजिएगा। देखिए, अल्लाह के नबियों के नामों पर ये सूरतें आ रही हैं, तो इनके अंदर पैगाम भी बड़े खूबसूरत हैं। सूरत इब्राहिम के अंदर शुक्र और कुफर का फ़र्क, और इसी तरह से अंधेरे और रोशनी, इसका बहुत ज़िक्र मिलेगा इस पूरी सूरत में। अगर आप नाम को देख लें तो हज़रत इब्राहिम का किरदार भी झलकता है। बी फोकस्ड, सोसाइटी का, वक्त का रिवाज जो भी, उसको छोड़ दो, उसकी फ़िक्र नहीं करो, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में चलते जाओ जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। और इसी में फिर आपको इंशाल्लाह उन कुर्बानियों का भी जिक्र मिलेगा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में दी थी। इसमें चंद आयात इतनी खूबसूरत है कि अगर सिर्फ उन दो तीन आयात पर आज की उम्मत मुस्लिमा अमल करने लग जाएगी तो यकीनन तब्दीली आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाशुक्रियों को छोड़कर शुक्रगुजारियां पैदा करो अपने अंदर, पॉजिटिव सोच लाओ, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, और इसी तरह से फिर अपने आप को अल्लाह के रास्तों में एक मज़बूत दरख्त की तरह खड़े करो। इसमें एक आयत है जिसमें पूरे इस्लाम का खुलासा दिखता है कि इस्लाम एक मज़बूत दरख्त की तरह फैलता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इस सूरत को पढ़ने के दौरान आप जिन चीज़ों को आयतों के साथ देखेंगे तो वो टोटल 8 टॉपिक हैं, टोटल 52 आयतें हैं। मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 से 4 में कुरान का मकसद और तारुफ है। आयत नंबर 5 से 8 में तारीख से सबक दिया गया कि शुक्र और कुफर करने वाली कौमों का क्या हाल हुआ। आयत 9 to 17 में शुक्र और कुफर के दरमियान की कशमकश है कि कैसे हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आयत नंबर 18 से 23 काफरों के आमाल की मिसाल दी जा रही है और आखरत का एक मुकालमा है। आयत नंबर 24 से 27 में कलमा तैयबा को एक खूबसूरत मिसाल से पेश किया गया। आयत 28 से 34 में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म है वरना अजाब होगा। और आयत 35 से 41 में तारीख़ इब्राहिम से शुक्र और तौहीद की दलील है। और आखिर में फिर आयत 42 से 52 में अक्लमंदों को क़यामत के कुछ मनाजर दिखाए जा रहे हैं। पूरी सूरत का टॉपिक इंतज़ार और अय्यामिल्लाह, नाशुक्री का नुकसान, और इसी में वो मुकालमा है जो क़यामत के दिन शैतान करेगा। आइए सुनते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान के फंदों से आज़ाद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाएँ। हाईलाइट करें, यह किताब आपको रोशन ख्याल बनाती है, यह किताब आपको बैकवर्ड नहीं बनाती, इल्यूमिनेट भी करती है और एनलाइटन भी करती है। आज इसी किताब को हमने ओल्ड डेटेड बुक कहकर छोड़ दिया। पूरा कुरान जब हो जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपकी सोच निखर गई, इस्लाम से खौफ दूर हो गया और आपको लगेगा कि वाकई मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस दुनिया में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखेगी, खौफ तो कम अज़ कम आपके दिल से निकल ही जाएगा। और ये पूरे कुरान का मकसद भी बताती है, जो हमारा मोटो है जिस पे हम वर्किंग मेथडोलॉजी अपनी सेट करते हैं वो यही आयत है कि हमने लोगों को अंधेरों से निकालना है। एनलाइटन योर हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, यही स्लोगन है, आपने अगर बैनर पे कभी देखा हो, कि असल में ये अंधेरों से रोशनियों की तरफ लाने वाली किताब है। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर ले आए। याद रखिए, इस किताब को छोड़ने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये एक अंधेरा है। किधर बुलाती है ये किताब? इनके रब की तौफीक से उस रब के रास्ते की तरफ जो ज़बरदस्त और अपनी तारीफ़ में आप महमूद है और ज़मीन व आसमान की सारी मौजूद चीज़ों का मालिक है। वबैलु लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और तबाही है, सजा, तबाहकुन सजा है हक को कबूल करने का इनकार करने वालों के लिए। कौन होता है काफिर? आपका मेरा तो एक ही गुमान है ना, अल्लाह को ना मानने वाला। नहीं, अगले आयत को देख लीजिए, काफिर की एक नई तारीफ़ आपके सामने आ रही है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरा। कौन है काफिर? जो दुनिया की ज़िंदगी को आखरत पर तरजीह देता है। कुफर के दर्जे होते हैं, तो आप मैं अपने अमल को चेक कर सकते हैं कि मैं किसको तरजीह देती हूँ, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ है, दुनिया या आखरत। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ते इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए। अल्लाह हम सबको गुमराहियों से बचा ले। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कभी कोई रसूल भेजा तो इसने अपनी कौम ही की ज़ुबान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें खोल कर अच्छी तरह से बयान करे। तो गोया के कुरान का तर्जमा अपनी ज़ुबान में समझना लाजिम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हर नबी ने अपने कौम की ज़ुबान में बात की थी। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। वह अल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब भी है और वो हिकमत वाला भी है। आज आप देखिए इंग्लिश फर फर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारी तो मासियाँ तक इंग्लिश मान लेती हैं, बोल लेती हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, संडे मंडे छुट्टी। तो क्या मैं और आप कुरान की अरबी नहीं सीखेंगे? हमारा भी तो मालिक है ना, हमें भी तो वो ये ज़ुबान सिखा कर हमारी तरबियत करता है। और यकीन करें, जो अरबी ज़ुबान में हुसन है, मैं खुद इकरार करती हूँ कि मैं तर्जमा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी यूँ चली गई। वो अल्लाह के कुरान के अल्फाज का जो रूप होगा ना, वो हमारे तर्जुमों में बात नहीं आती, बस तर्जुमानी हो जाती है, जस्ट लाइक बात हम समझ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इतना वक्त लगाने वाला बनाए कि हम इसको बेहतरीन तरीके से समझें। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, इसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। देख लें, बार बार तारीकी से रोशनी का तذکرہ ہے, اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ہسٹری پڑھو لیکن عبرت کے لیے، صرف فکشن کے طور پر نہیں۔ اور ان آیتوں میں نشانی ہے ہر بہت صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ میں صبار بھی بنا دے اور شکور بھی بنا دے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی سے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا لیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا، لائن شکر تم لازید انکم، اگر شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ آپ اپنی دوست کا شکریہ بولتی ہیں اور کہتی ہیں دال بڑی مزے کی تھی، اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ جب دال پکائے گی آپ کو بھیج دے گی۔ اور آپ کو کھانا بھیجا، سناؤ کیسا تھا، کہتے میں نہیں کھاتی، ہمارے گھر کھاتا نہیں کوئی کسی کا، اگلی دفعہ بھیجے گی۔ یہی ہے لائن شکر تم لازید انکم، خوش رہا کریں، اسمائلی، پرجوش۔ اللہ نے جو آپ کو دیے شکر کریں، اللہ آپ کو نعمتیں اور دے گا، اور اگر روئے دھوئیں گے، جلے کڑے رہیں گے تو پھر رونا دھونا ہی پڑتا رہے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے رہنے والے سب کفر کر لیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اعلیٰ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں، جن کا شمار اللہ کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ ہاتھ میں دبا لیے۔ ہر دور میں لوگوں کو نبیوں کا پیغام عجیب لگا، اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا اف اللہ ہی شکن، ہائی لائٹ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے ایسے لوگوں کو بولنے والا۔ کہا کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ اللہ اکبر، نبیوں کے منہ لگتے تھے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آئی؟ یہ ہے وجہ جس پہ نبی اچھے نہیں لگتے تھے، کہ خاندان کے طریقوں سے ہمیں نہ روکو۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تم جیسے بشر ہی تو ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ کے حکم سے آ سکتی ہے، اور اللہ پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کو سوچئے ذرا، دل سے شکر کا چشمہ پھوٹتا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمارا راستہ کھول دیا، اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا۔ رہ گئیں تکلیفیں آزمائشیں، تو جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔